ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. हमारा ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है. दुनिया में कहते हैं कि मानव जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन हम कहते हैं कि मानव जीवन तो 84 जन्म लिए, पर सब मानव जीवन में यह मानव जीवन ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ है. यही जीवन हीरे तुल्य जीवन है, देवताओं के जीवन से भी ऊंच है, क्योंकि इस संगम पर भगवान हमारे साथ है, भगवान की छत्र छाया है. आपने बहुत सुंदर क्लास आप सुनी, और जब स्वयं भगवान की हमें छत्र छाया है तो फिर किस बात का डर है. लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति क्यों डावाडोल होती है, क्यों कभी कभी हम माया के वश होते हैं, क्यों कभी संशय में आ जाते हैं, अवश्य कुछ तो कारण होगा. कहीं पर निश्चय डगमगा जाता होगा, जैसे कोई व्यक्ति ठोस जमीन पर खड़ा है, पर कहीं कभी वो जमीन हिलने लगे तो कितना घबरा जाएगा, ये जमीन हिल कैसे रही है. तो आज का जो हमारा विषय है कि निश्चय की नींव को मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि माया सदा इंतजार करती है कि कब मैं इस आत्मा पर वार करूं. और बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारी इस समय युद्ध है माया के साथ, पल पल पर हमारी परीक्षा है. ऐसे नहीं कि परीक्षा अंत में ही केवल होगी, कदम कदम पर हमारी परीक्षा है, और माया हमें हराने की कोशिश करती है. तो देखा गया है कि माया कब हराती है हमें, जब हमारा निश्चय थोड़ा डगमग होने लगता है, या यूं कहें कि माया निश्चय को डगमगाने के लिए आती है. कभी स्वयं में संशय, कभी बाबा में संशय, कभी ड्रामा में संशय, कभी परिवार में संशय, कभी सुनी सुनाई बातों के कारण संशय. तो कई तरह के वार जब मन बुद्धि पर होते हैं तो निश्चय की नींव डगमगाने लगती है. लेकिन बाबा ने एक शब्द सदा पक्का कराया है, और वो एक शब्द है दृढ़, दृढ़ता. कि कुछ भी हो जाए निश्चय की नींव कमजोर नहीं होगी. चार प्रकार का निश्चय बाबा कहते हैं, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय. ये निश्चय का फाउंडेशन, ये चार पहिए की तरह है हमारे ब्राह्मण जीवन के। तो कैसे इन चारों पिलर्स, जो नींव है, फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन के, वो कभी भी न हिले, उसके लिए हम क्या करें, क्या मन में सोचे? क्योंकि दुश्मन सामने खड़ा है और हमें उन्हें मारना है, तीर चलाना है। तो बाबा कहते, एक अर्जुन की बात नहीं है कि कैसे उसका निश्चय डगमगाने लगा, युद्ध स्थल पर खड़ा होकर चारों ओर अक्षुणी सेना है कौरवों की और अर्जुन का निश्चय डगमगाने लगा। और भगवान ने उसका निश्चय कैसे पक्का किया, जो अंत में भगवान के आगे वो सरेंडर हो गया। सब कुछ जानते हुए भी किस बात का उनको संशय आया जो वो युद्ध करने लिए तैयार नहीं हुआ। तो गीता के अंदर तो यही आता है कि वो मोह के वश हो गया। तो वास्तव में देखा जाए, भगवान ने उसका निश्चय कैसे पक्का किया, सारी गीता अर्जुन का निश्चय पक्का कराने लिए ही 18 अध्याय है। सबसे पहले जैसे ही अर्जुन अक्षुणी सेना को देखने लगा, उसमें उसके मामा, चाचा, काका, गुरु, गुसाई, द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, उनके बड़े बड़े गुरु थे जिन्होंने उनको इतनी शिक्षाएं दी थी, उनके सखा संबंधी जो उनके मित्र थे जिनके साथ बचपन में खेला था, और अचानक उनके सामने वो दुश्मन के रूप में थे और भगवान ने उनको कहा कि इनको मारो। अब कैसे उनकी नींव कच्ची हुई, संशय आया, क्योंकि वो पुरानी बातें याद करने लगा कि यही तो है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया था, यही तो है जिन्होंने मुझे सिखाया था। लेकिन उस समय उनके आगे एक परीक्षा थी और वो थी कि इन सबको मारना है। इसलिए अर्जुन तैयार नहीं था, संशयात्मक बुद्धि बन गया और भगवान ने उनको कहा, संशयात्मक बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चयात्मक बुद्धि विजयन्ति। तो किस बात का उनको निश्चय दिलाया, क्योंकि वो मोह के वश था और ये उनको संशय था कि इन्होंने जो मुझे जितना दिया और मैं इनको मार डालूं। तो सबसे पहले भगवान ने उनको निश्चय किस में बिठाया, उनको निश्चय बिठाया आत्मा में कि हे अर्जुन, आप इनको देह मत देखो, देह देखते हो इसीलिए ये विचार आता है मैं कैसे मारूं। ये तो आत्मा है, ये तो अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है, ये तो केवल चोला बदलती है, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। तो जो हद में फंसा हुआ था अर्जुन, उस हद से भगवान ने उसको ऊपर किया। ये निश्चय का पहला फाउंडेशन है, उस हद से पार किया कि जिनको तुम मामा चाचा काका गुरु ये सब देख रहे हो, ये सब न देख, इनको केवल आत्मा देखो। और ये जितने भी रिश्ते हैं ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए इनको आत्मा देखेंगे और ये कभी मरने वाले नहीं हैं, तो आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि किसकी मृत्यु होगी तो दुख होता है, लेकिन आत्मा को जब देखते हैं तो दुख नहीं होता है, क्योंकि आत्मा फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहाँ न कहाँ मिलेगी जरूर, क्योंकि ये तो सब अविनाशी है। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है तो हमारा निश्चय एक कदम बढ़ता है कि इस संसार में सब कुछ एक तरफ देखा जाए नश्वर है, सब कुछ नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इसीलिए दूसरी तरफ देखा जाए सब कुछ अविनाशी है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है इन आंखों से ओझल होगा, लेकिन नष्ट नहीं होता है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, हम और आप पहले भी मिले, अब भी मिले, फिर भी मिलते रहेंगे। आत्मा के निश्चय से, परमात्मा के निश्चय से, ड्रामा के निश्चय से, ये सब कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हो ये कुछ भी नष्ट नहीं होना है, सिर्फ ये दृश्य बदलनी है बस, और कुछ नहीं। फिर वापस यही दृश्य आना है 5000 साल के बाद। इसीलिए पहला निश्चय है कि इनको आत्मा देखो। तो संशय का पहला कारण ही है जब हम देह देखते हैं, और बाबा कहते हैं देह को देखना ही नहीं है। अगर देखना है तो आत्मा को देखना है, और कहाँ देखना है आत्मा को, केवल मस्तक पर देखना है, अभी बताए ना, केवल ज्योति को देखना है। और अगर उस ज्योति को देखने में कामयाब हुए तो आत्मा का निश्चय इतना पक्का हो जाएगा जो कभी मन में संशय नहीं उठेगा, न खुद के बारे में न दूसरे के बारे में। अभी कई बार हम दूसरों के बारे में संशय उठाते हैं इस हिसाब से, पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं ये क्या करेगा, शंका शंका, ऐसी शंकाएं मन में उत्पन्न होती है जिससे हमारा अपने प्रति भी निश्चय खत्म हो जाता तो और दूसरे के प्रति भी निश्चय खत्म हो जाता। शंकाएं परिवार में भी हम देखते हैं, शंका या संशय एक ऐसा कीड़ा है जो एक जैसे एक कीड़ा होता है, सब वाइट एंट्स लकड़ी को खोखला बना देते हैं। तो संबंधों में खोखलापन क्यों आता है, क्योंकि संशय का कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। ये ऐसे कर रहा है जरूर इसका मतलब ये होगा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों, क्या क्यों, कौन कहाँ कैसे कब, ये इतने मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो संशय का कीड़ा उत्पन्न होकर के संबंधों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन हम फिर भी उस संबंध को कैसे सुदृढ़ करें, हम उनको आत्मा देखें। और जब आत्मा देखना है माना उनकी अच्छाइयों को देखना है, आत्मा देखना माना उनके गुणों को देखना है। आत्मा केवल देखने की बात नहीं है, चलो आत्मा एक ज्योति है वो दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन आत्मा को देखना माना उनके गुणों को देखना कि हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप है। और हर आत्मा ऐसे है, ये नहीं कि कुछ है कुछ नहीं है, और मैं तो हूं ही। तो इसीलिए जैसे हम स्वयं में ये निश्चय रखते हैं और दूसरों में भी ये निश्चय रखते हैं कि ये असल रूप में ये ऐसे ही है, इन्हीं गुणों के स्वरूप है, लेकिन हो सकता है दे अभिमान के वश, हो सकता है कुछ अपनी कमजोरी के वश विचार कुछ बदल रहे होंगे, लेकिन अगर मुझे विजयी बनना है तो पहला ये संशय निकाल देना होगा कि ये कोई बुरे हैं। बुरे नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। ये नहीं भगवान ने कहा इनको दुश्मन जानो, इनको आत्मा जानो। और शरीर तो है ही नश्वर, आज नहीं तो कल ये तो जाएगा, इसलिए आत्मा जान करके अपना कर्तव्य पालन करो। अब ये कितनी ऊंची बात है, ये मेरा मामा है, चाचा है, फलाना है फलाना है, ये सोच करके कर्तव्य पालन नहीं करो, लेकिन ये आत्मा है और आत्मा रूप में मेरा भाई है, इस रूप से कर्तव्य पालन करो और जो उसके प्रति संशय है वो मिटाओ। और संशय मिटाने के साथ साथ अपना कर्तव्य पालन करो, फिर आगे उनकी तकदीर। ये है निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो जब हम दूसरे को भी उस आत्मा रूप में देखते हैं और उस ऊंची नजर से देखते हैं तो घृणा भी नहीं आती, नफरत भी नहीं आती, आकर्षण भी नहीं होता है, कोई दुश्मनी भी नहीं पैदा होती है, वो आत्मिक स्नेह पैदा होता है। ये जीवन का संघर्ष है और एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि वो व्यक्ति विरोध करे, वो व्यक्ति नफरत करे और हम उस समय उसको उसी ऊंची नजर से देखें, एक बहुत बड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा ही है। लेकिन इस अग्नि परीक्षा से हमें पास होना है ये भी निश्चय चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूं। तो फिर खुद में निश्चय, फिर गीता में आता अर्जुन को भगवान उसकी महानता सुनाते, हे अर्जुन तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम कभी हारने वाले नहीं हो, जो वचन दिया है उसका पालन करना होगा, ये क्षत्रिय की निशानी है। कहते हैं ना, धर्त परिये धर्म न छोड़िए, मर जाएंगे पर अपना वचन नहीं छोड़ेंगे, जो हमने प्रण किया है उसके लिए प्राण चले जाए पर प्रण न जाए। तो ये जो निश्चय है अपने अपने लिए, आत्मा वो भी आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं, ये एक ऐसा निश्चय है कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, कितनी ऊंची आत्मा हूं, कितनी महान आत्मा हूं। रोज बाबा मुरलियों में हमें कोई न कोई ऐसा टाइटल देते हैं जो हमारी महानता दर्शाता है। आज भी बाबा ने टाइटल दिया, महावीर हो। कौन हो सकता है महावीर? केवल एक हनुमान महावीर नहीं, बजरंग बली, हाँ वो महावीर नहीं, हम सब महावीर हैं। तो महावीर किसको कहा जाता है? जो निर्भय हो, जो उड़ सकता हो, जो हर परिस्थिति का सहज सामना कर सकता है। तो मैं वो महावीर हूं और जो संकल्प किया वो संकल्प पालन जरूर करूंगा, करूंगी। ये अंदर का दृढ़ संकल्प, ये प्रतिज्ञा जिसको दृढ़ करते हैं हम, ये वास्तव में बहुत बड़ा निश्चय है। तो जब ये निश्चय हमको पक्का हो जाता है कि जो भगवान ने हमें टाइटल्स दिए हैं वो कोई और के नहीं है, मेरे हैं। कई बार बाबा पूछते हैं क्या ये किसके टाइटल है, केवल महारथियों के हैं क्या? आप कहेंगे मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो नया हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है। बाकी महारथी जो 50 साल 60 साल 80 साल उनका ही ये टाइटल होगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, जिस समय निश्चय बैठा स्वयं में, बुद्धि श्रेष्ठ बनी, बुद्धि का स्विच ऑन हुआ, मैं कौन हूँ, आप महावीर बने। यहाँ बिल्कुल, इसीलिए ये नहीं सोचना कि ये तो जो 80 साल पुराने दादियां वही है या जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन है वही है, हर एक है, क्योंकि बाबा के तो हम सब बच्चे हैं। और बच्चे केवल ये नहीं है कि इनको अधिकार है, मुझे अधिकार नहीं है। यहाँ तक बाबा कहते सारी कुर्सियां खाली है। मुझे याद है एक बार एक कोई विदेशी भाई था, बड़ा रमणीक था, तो अब ट्रांसलेशन करना था। उसने मुझे कहा मुझे दादी के पास ले जाओ, दादी प्रकाशमणि के पास, मुझे एक प्रश्न पूछना है उनसे। तो मैंने कहा क्या पूछना है? तो कहा नहीं, आप मुझे दादी से मिलाओ और मैं दादी से ही पूछूंगा। तो मैंने दादी से टाइम लिया और उनको ले गई मैं। तो दादी को कहता है, दादी जी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सेकंड नारायण बनेगी। ये दादी को उसने कहा, आप सेकंड नारायण, पहला नारायण तो फिक्स हो गया ब्रह्मा बाबा, हंसी की बात है ये, आप सेकंड नारायण बनोगे। तो दादी उनको देखती रही, ऐसे बहुत प्यार से देखती रही। तो दादी ने कहा कि किसने कहा आपको, किसने कहा, ऐसे मजा हंसी में, आपको किसने कहा? बाबा ने तो नहीं कहा है, बाबा ने तो नहीं कहा, दादी ऐसे करती थी, बाबा ने तो नहीं कहा है। तो कह नहीं दादी, मुझे विश्वास है आप सेकंड नारायण बनोगे। तो दादी ने उसको कह दिया, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। और जैसे ही दादी ने उसको कहा आप भी बन सकते हो, तो वो तो घबरा गया घबरा गया उसी समय। ऐसा बड़ा वरदान दादी मुझे दे रही है कि आप भी बन सकते हो। तो दादी ने कहा, देखो सेकंड नारायण डिक्लेयर तो हुआ ही नहीं है, हुआ है डिक्लेयर, बाबा ने कहा है, किसी के लिए भी नहीं कहा है, डिक्लेयर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप भी क्यों नहीं बन सकते हो, सब कुर्सियां खाली है। वो म्यूजिकल चेयर्स का खेल होता है ना, उसमें म्यूजिक बजता रहता है, सब गोल गोल घूमते रहते हैं, अब म्यूजिक बंद हुआ ही नहीं है जो कुर्सी ले, तो कुर्सियां सब खाली है, म्यूजिक चल रहा है। और कब म्यूजिक बंद होगा, वो तो अंत में ही होगा, जब कर्मातीत अवस्था होगी, जब परीक्षा की रिजल्ट आउट होगी, यही उसी वही समय होगा। इसीलिए आप भी ले सकते हो। तो देखो कहने का भाव है कि कोई भी सीट अभी भरी नहीं है दूसरी, भले लेट भी आए ना, ऐड होते जा सकते, ऐड होते जाते ना, लेट भी आए तो भी, जैसे गरबा खेलते हैं, अब कितना बड़ा सर्कल बनाते जाओ, पहले छोटे सर्कल से शुरू होता है, फिर ऐड होते जाते, बड़ा सर्कल बनता जाता है, कितना सुंदर वो रास मंडल तैयार हो जाता है। तो ये रास मंडल तैयार हो रहा है, संस्कारों का मिलन का रास मंडल ये तैयार होता जा रहा है, नए ऐड होते जा रहे हैं, और सबकी नजर कुर्सी पर तो है ही। पर फिर भी बाबा कहते कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, आज भी बाबा ने कहा कोई नौकर बनेगा, चाकर बनेगा, दास दासी, ये सब बन रहे हैं। इसीलिए ये कभी नहीं सोचे हम तो लेट आए। इसलिए बाबा जब मुरली चलाते हैं तो सबके लिए चलाते हैं, ऐसे नहीं कि महावीर इनको ही कहा, सब महावीर हैं। तो इतना अपने में निश्चय हो, और वो निश्चय अगर मजबूत है तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता है। अंगद को कितना निश्चय था, रावण के पास गया और कहा कि राम, श्री राम फिर से मुझे भेजा है, पहले हनुमान को भेजा, फिर अंगद को भेजा, फिर से भेजा है कि आप सुलह कर लो, नहीं तो आप जीत नहीं सकोगे। पर रावण को उल्टा नशा था, अभिमान था, तो अंगद ने क्या किया, पैर जमा दिया। एक पैर कौन सा था, निश्चय का पैर, कि हिला तो सको आप मुझे ही नहीं हिला सकोगे तो राम को क्या हिलाओगे, अब हिला के तो देखो। और वो निश्चय का जो पैर था इतना मजबूत था कि रावण हिला नहीं सका। इस पर किसी ने एक जोक बनाया था, जोक हंसी की बात है। तो जब ये अंगद वापस गया अपने बैरक में जहां वो रहे पड़े थे, तो सब जो उसके साथी थे अंगद के, उन्होंने अंगद को चिढ़ाना शुरू कर दिया, है ना, कहना शुरू कर दिया, अरे अंगद तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसा पैर जमाया जो रावण हिला नहीं सका, लेकिन अगर वो हिला लेता तो, जोक है, अगर वो हिला लेता तो अंगद ने बड़ा वंडरफुल जवाब दिया, उसने कहा उसमें मेरा क्या जाता, सीता तो राम की थी ना, मेरी थोड़ी थी, वो तो उसका काम है ना, मैं तो अपना दूत बन के गया, अगर वो हिला देता तो उसमें मुझे क्या कमी होती, वो तो राम को होती ना, क्योंकि सीता को वापस करने की तो सारी बात है। तो कहने का तो इसीलिए तो सीता उसकी थी, इसीलिए ये राम का फर्ज बनता है कि इसमें मजबूती दे, यानी राम पर भी इतना विश्वास, तो जितना खुद पर विश्वास उतना ही राम पर भी विश्वास, यानी भगवान पर भी विश्वास। अभी ये है निश्चय की बात। तो केवल खुद में ही निश्चय हो ये तो ठीक है, लेकिन खुद में निश्चय के साथ बाबा में निश्चय, कौन है मेरा साथी, अगर मेरा साथी सर्वशक्तिमान है तो मुझे किस बात का डर। तो अगर थोड़ा बहुत भी हम कमजोर हैं, हम समझ रहे हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरा निश्चय तो उनके ऊपर है। इस पर भी एक मिसाल देते हैं कि एक मेले में एक पिता और पुत्र साथ में जा रहे थे, तो पिता ने बेटे को कहा, बेटा छोटा था, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, कहीं गुम ना हो जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। तो बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मेरा हाथ तो छोटा है, आपका हाथ तो बड़ा है और मजबूत है, मैं पकड़ूंगा तो शायद मेरा हाथ फिसल भी जाए, आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने पकड़ा है ना। कितनी बड़ी बात, कितनी ऊंची बात है ये। तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है या हमने बाबा का हाथ पकड़ा है? हाँ, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वो कितना मजबूत होगा। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि किसने मेरा हाथ पकड़ा है, किसका मैंने हाथ पकड़ा है उनसे भी ऊंचा है किसने मेरा हाथ पकड़ा है, ये जब बुद्धि में आएगा तो वो हाथ तो कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने पकड़ा है तो फिर मैं तो मेरी इच्छा है मैं छोड़ दूं, तो निश्चय इतना ऊंचा है कि किसने मेरा हाथ पकड़ा है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, द्वापर युग से तो कितनी भक्ति की और भक्ति का फल भगवान मिला, भक्ति का ही फल है ना भगवान। लेकिन ये जरूर है कि बाबा कहते मैं अपने समय पर आता हूं, ऐसे नहीं कि द्वापर में तुमने पुकारा और मैं चला आया, नहीं, भले साक्षात्कार कराना, भक्ति का अल्पकाल का फल देना वो अलग बात है, लेकिन भगवान का आना तो इसी समय होता है जबकि सृष्टि को बदलना है। तो बाबा कहते भले तुमने कितनी भी भक्ति की, लेकिन ऐसे नहीं तुमने की और मैं आया, नहीं, मेरा समय अपना फिक्स्ड है ड्रामा के अंदर, मैं अपने समय पर आता हूँ जबकि मुझे परिवर्तन करना है। तो वो जो भक्ति की उस भक्ति का ये फल मिला, जो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है, तो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की उनको ही भगवान मिलता है, और भगवान से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से क्या होता है, सदगति होती है। तो भगवान क्या देता है हमें, गति और सदगति देता है। आज भी बाबा ने कहा गति के साथ सदगति अटैच्ड है, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति अटैच्ड है, का बहुत गहरा राज है ये। क्या गहरा राज है कि केवल मुक्ति नहीं देता है, केवल मुक्ति तो मोक्ष हो गया, फिर वापस इस संसार में आना ही नहीं है, पर मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति अटैच्ड माना हर आत्मा को मुक्ति जरूर मिलती है, सब जाएंगे अपने घर, लेकिन फिर आएंगे अपने अपने समय पर सृष्टि रंगमंच पर। तो जो थोड़ा समय उनका होगा, जितना समय सृष्टि मंच पर है उनका चौथा भाग तो उनकी जीवन मुक्ति है ही है, या जो भी कहो, पहले सुख जरूर मिलना है, ये एक लॉ है कि पहले सुख मिलता है फिर दुख मिलता है, ये बाबा ने आज कहा। इसलिए मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति अटैच है ही है, कोई सदा के लिए केवल मुक्ति में जाए और मोक्ष हो जाए फिर वापस न आए, ये नहीं होगा। इसीलिए भगवान मेरे को क्या दे रहा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, इतना निश्चय हो उसमें, और उसके लिए भगवान स्वयं आया है और मुझे ये ज्ञान दे करके, जो मेरी भक्ति का ही ये फल है, ज्ञान दे करके मेरी गति सदगति कर रहा है, ये इतना बड़ा निश्चय हो, क्योंकि उसकी भेंट में तो बाकी तो जो कुछ हमें मिलता वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस किसने मेरा हाथ पकड़ा है, कितना मजबूत होगा वो हाथ, इस पर भी एक मिसाल देते हैं कि एक किसी वो दुकान में माँ अपने बच्चे को लेकर गई, और बच्चा बड़ा प्यारा था, तो जो दुकानदार था बहुत बहुत उस बच्चे की बातें सुन के बड़ा खुश हुआ, तो उसने क्या किया, टॉफी का वो डब्बा था वो खोला और कहा बेटा लो आपको जितना चाहिए लो इससे, लेकिन बच्चे ने नहीं उठाया, नहीं लिया, बहुत कहा लो बेटा लो, नहीं लिया। तो फिर उसके बाद क्या किया, माँ को कहा नहीं, फिर उसके बाद क्या किया, वो दुकानदार ने खुद ही हाथ उठा करके वो उसमें बहुत सारे टॉफी थे और बच्चे को दी और उठा लिया, बच्चे ने उठा लिया। तो मम्मी ने कहा कि जब आपको कहा कि उठाओ तो आपने उठाया नहीं, अब उसने दिया तो आपने ले लिया। तो कहा मम्मी मेरे हाथ तो छोटे हैं ना, तो अगर अगर मैं लेता तो थोड़े ही आते, अब उसके हाथ तो बड़े हैं ना, तो उसका तो ज्यादा मिला ना, तो उसने दिया तो ज्यादा मिला, मैं लेता तो थोड़ा ही मिल लेता। कई बार होता ना, हम किसको प्लेट पकड़ाते हैं वो कहेंगे ये काजू है, पिस्ता है, बादाम है या जो कुछ है ये लीजिए, तो हम कितना लेंगे, एक ही लेंगे, लेकिन वो पूरी प्लेट भर के देगा तो चलो वो लेंगे, पर हम अगर खुद लेंगे तो कितना लेंगे एक ही पीस लेंगे। तो इसीलिए हम नहीं लेते हैं, वो देता है, हमने तो बहुत मांगा भक्ति में। अभी तो बाबा कहते मैं तो छप्पर फाड़ के देता हूँ, मांगने से कुछ भी नहीं मिला, भीख भी नहीं मिली, और अभी बाबा छप्पर फाड़ के दे रहे, इतना बड़ा निश्चय हो ये। और जब बाबा हमें दे रहे हैं तो फिर बाकी किसमें आंख डूबेगी, कहीं भी आंख नहीं डूबेगी, किसी मनुष्य से कुछ अल्पकाल की प्राप्ति में आंख नहीं डूबेगी, डूब भी नहीं सकती है क्योंकि इतना निश्चय हो बाबा में, बाबा मुझे देने वाला है। भले देगा तो किसके थ्रू ही, पर बाबा ही दे रहा है ये बुद्धि में हो तो बाबा की याद रहेगी, देहधारियों की याद नहीं रहेगी। नहीं तो इनसे, इनमें एक बुद्धि गई, इनमें बुद्धि गई, इनमें आकर्षण हुआ, इनसे नफरत हुई, इनसे ये हुआ, ये सारी बातें हद की बातें हैं। बाबा हमको इनसे बहुत दूर कर रहा है। तो बाबा ने हमारी दृष्टि इतनी बेहद की बना दी है। कई लोग कहते आप लोगों ने घर बार छोड़ा, हम लोगों को कहते घर बार छोड़ा, हम कहते कौन कहता है घर बार छोड़ा, हमें तो इतना बड़ा परिवार मिल गया, कौन सा घर बार छोड़ा हमने। वो पहले लौकिक परिवार में थे, चलो दो भाई दो बहनें, चलो तीन चार, कोई दस बारह भी हो, वो फिर भी हद है। और अभी कितना बेहद परिवार मिला, तो छोड़ा या पाया। छोड़ा कुछ नहीं, पाया। और ही हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि मैं मधुबन में रहती हूँ, बाबा के जो ओरिजिनल घर है वहां रहती हूँ। सारी दुनिया आती है, सारी दुनिया आती है बाबा की शांति स्थल पर, तो आएंगे ना। और सचमुच इतना महसूस होता है कि कितना भाग्य है हमारा जो भगवान के द्वार पर सारी दुनिया आ रही है और वहां हम रह रहे हैं। तो जब ये बुद्धि में आता है कि वो सारी दुनिया यहाँ आती है, कितने बाबा के केंद्र हैं विदेशों में, 140 देशों में वो बस बच्चे आते हैं और फिर हम भी वहां जाते हैं, तो ये नशा चढ़ता है। किसी का एक घर होगा, छोटा सा घर होगा, एक ही घर होगा, उसी में मोह होता है। और भगवान ने तो हमें 140 देशों में घर दे दिए हैं। कहीं पूछते ना आपका वहां सेंटर है उस देश में, हम कहते है, 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 फलानी जगह है, हम कहते है। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां पर बाबा के सेंटर नहीं होंगे। अब सोचो ये कितना बड़ा निश्चय है, हमारा वहां भी घर है, हमारा वहां भी सेंटर है। अकेले जाते हैं पर कोई डर नहीं है क्योंकि सब जगह बाबा के घर है, सब जगह अपने भाई बहने हैं। तो ये इतना बड़ा निश्चय, खुद में निश्चय और बाबा में निश्चय, ये निश्चय की नींव इतनी मजबूत हो जो कोई भी हिला न सके। और फिर तीसरा ड्रामा में निश्चय, ये तो और भी ऊंचा निश्चय है। मनुष्य इस परमात्मा की रचना को समझ नहीं पा रहे हैं, ये कैसा ये संसार है, कैसा ये खेल है, क्या है ये सब, इसलिए संशय उठाते रहते और भगवान को ही कहते रहते, हे भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों, कई प्रश्न करते हैं। हे भगवान आपको क्या पड़ी थी ये सब दुनिया बनाने की, क्या जरूरत थी। तो भगवान को क्या पड़ी थी ये तो बाद का प्रश्न है, लेकिन ये बनाई नहीं है भगवान ने, ये तो बहुत ऊंची बात है, बनाई नहीं है, ये तो सदा है ही है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों शक्तियां अनादि अविनाशी है। ऐसा कोई समय नहीं था जब समय नहीं था। समय, समय कहते हैं ना, समय हर समय होता है, तो ऐसा कोई समय नहीं था जब समय नहीं था। समय एक लकीर की तरह नहीं है, यहां से शुरू हुआ या पूरा होगा समय, लेकिन समय एक चक्र की तरह है। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है कि समय एक चक्र की तरह है, जहां से शुरू हुआ वहां अंत हुआ फिर शुरू हुआ, इसलिए न कोई शुरू है न कोई अंत है, चक्र में कोई अंत नहीं होता है, कोई आदि भी नहीं है, ट्रांजिशनल चेंज है। लेकिन जहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, एक बड़ा चेंज है, तो हम कह सकते हैं अंत है और आद है, पर वो भी जुड़े हुए हैं। जैसे 24 घंटे का दिन रात है, फिर उसके बाद फिर पीएम के बाद एएम शुरू हुआ। तो ये कैसा सुंदर राज अपनी रचना का भगवान ने हमें बताया है, जिस राज को समझ करके कोई संशय मन में उठ ही नहीं सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना एक्यूरेट ड्रामा है ये, इनसे और अच्छा ड्रामा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ड्रामा में क्या चाहिए। हाँ, ताली बजा अपने ड्रामा के लिए भी। कई बार होता है ना कि हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, जाते होंगे, पहले तो देखी होगी बहुत, इतना अच्छा उनका वो जो कहानी, इतना सुंदर, इसमें सारे प्लॉट, सारे सब कुछ ऐसे राज भरे हुए, और कैसे खुलते गए, कैसे खुलते गए, इतना बढ़िया, जो इनसे और अच्छी फिल्म हो ही नहीं सकती है। ऐसे कई बार होता है, हिट जाती है वो फिल्म। तो इस ड्रामा से और सुंदर कोई और अच्छा बन जाए, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि चार बातें हैं इसमें जो सदा हमें ड्रामा में निश्चय में याद रखनी है, जिसको पहली बात कहेंगे कि यह ड्रामा कल्याणकारी है। हर दृश्य में कल्याण है, चाहे दिखाई देता है उस समय अकल्याण, क्योंकि भविष्य तो पता नहीं है ना, इसीलिए अकल्याण दिखाई देता हो, लेकिन उसके पीछे कल्याण छिपा हुआ है, ये पहला निश्चय चाहिए ड्रामा के अंदर। तो कल्याणकारी है, कुछ भी अकल्याणकारी एक भी दृश्य नहीं है। राज जरूर है, पता नहीं है क्या कल्याण छिपा हुआ है, लेकिन अकल्याण नहीं है, ये इतना निश्चय हो। और दूसरा, इतना ही वो ऐसा ड्रामा है जो कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू जिसको बाबा कहते हैं, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि नया कहेंगे तो आश्चर्य होगा, प्रश्न होगा, और नया नहीं है, अनगिनत बार बजाया है, तो न प्रश्न उठेगा न आश्चर्य होगा। और कल्याणकारी है ये सोचा तो कभी दुख भी नहीं होगा, क्योंकि कल्याणकारी है। अकल्याणकारी है तो दुख होगा, जब पता है कल्याणकारी है तो दुख भी नहीं होगा। पता है कल्याणकारी है तो डर भी नहीं लगेगा, तो न प्रश्न उठेगा न आश्चर्य होगा, न कोई डर होगा, न कोई चिंता होगी, न कोई प्रकार का और सोच चलेगा, क्योंकि कल्याणकारी है। और दूसरा जो बताया, कोई भी नई बात नहीं है, तो प्रश्न उठने का तो सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि नई बात तो है नहीं। अब आप रामायण देखते हैं तो रामायण में पता है, अभी ये अभी सीता अभी जाएगा राम, अभी सीता का हरण होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और जब होता है तो आश्चर्य थोड़ी होता है, क्योंकि पता है कहानी, पहले से ही कहानी मालूम है। तो इस बेहद के ड्रामा की जो कहानी है वो हमें पहले से ही मालूम कर दी है बाबा ने, सब बता दिया है। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है। और तीसरी बात ड्रामा की, कि जो कुछ भी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इनसे और अच्छा नहीं हो सकता है, और अच्छा इनसे हो ही नहीं सकता है, सबसे अच्छा यही दृश्य है। तो कल्याणकारी भी है और नया भी नहीं है, एक्यूरेट भी है, और चौथी वंडरफुल बात की, जो कुछ है सब नया है, सब कुछ नया है। तो जो नई चीज होती है ना, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है ना नई चीज, कोई नया कोई चीज है तो कहेंगे अच्छा ये क्या है, ये क्या है, और नया है तो इंटरेस्ट होगा, इसको और समझे, इसको और जाने, इसकी और गहराई में जाएं। कोई कई बार बहुत पुराना होता है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से एक्यूरेट है तो इंटरेस्ट है, और चौथी बात हर वक्त नया है, हर वक्त नया है। इसलिए बाबा से जब बच्चे पूछते हैं बाबा ये क्या होगा ये होगा, बाबा कहते हैं वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, ठहरो, क्योंकि सब कुछ थोड़ी बताया जाता है तो सब कल्प पहले वाला ही, कुछ नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी नया है क्योंकि कुछ तो राज बाबा ने अभी तक नहीं बताए हैं, जो अंत में बाबा कहते राज खुलेंगे, जो कल भी बाबा ने मुरली में कहा। एक तरफ तो जय जयकार होगी तुम्हारा, तुम्हारी इतनी खुशी होगी, तुम्हें साक्षात्कार होंगे, अपने पद के साक्षात्कार होंगे, क्या बनने वाले उसकी खुशी होगी, तो एक तरफ खुशी होगी, और दूसरी तरफ जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, जो गलतियां करते रहे, जो अलबेले रहे, बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, वो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, ये भी बाबा ने कहा। तो ये भी लास्ट के दृश्य होंगे, लेकिन कैसे होंगे बाबा कहते वो आप खुद देखते चलना। इसीलिए हर वक्त नया ही नया अनुभव, और जितने नए अनुभव होते उतना अच्छा लगता है, नया अनुभव नया अनुभव। कई बार होता है ना पुराना पुराना है तो बोरिंग लगता है, तो इसीलिए नए से नया भी है और पुराने से पुराना भी है। जैसे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा नए से नया व्यक्ति है, न्यू मैन है, है ना। आदम, आदम पहला व्यक्ति, एडम, आदम, ब्रह्मा, जगत पिता। बाबा ने कल भी परसों कहा कि ब्रह्मा बाबा के लिए ये नहीं कहेंगे कि मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। एक है प्रवेश करना, दूसरा है एडॉप्ट करना। तो प्रवेश करता हूँ और इनके मुख से तुमको एडॉप्ट करता हूँ। सबसे पहले मम्मा को एडॉप्ट किया, अलौकिक माँ बनी। वैसे तो ब्रह्मा ही माँ है, पर अलौकिक माँ, क्योंकि मेल शरीर है इसीलिए फीमेल शरीर चाहिए, तो मम्मा अलौकिक माँ बनी। फिर बच्चों को एडॉप्ट किया, तो पहला मनुष्य जिसके द्वारा सृष्टि रची, और वैसे देखा जाए लास्ट मैन, बूढ़े थे बूढ़ा शरीर, अंतिम जन्म, अंतिम समय का शरीर, जो बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं आता हूँ। इसीलिए ब्रह्मा को ऊपर भी दिखाया है झाड़ में, तो नीचे भी दिखाया है, आदि में भी दिखाया है, तो अंत में भी दिखाया है, दोनों का संगम है, पुराने झाड़ और नए झाड़ का संगम। तो ये संगम सिद्ध करता है कि कुछ भी नया नहीं है और सब कुछ नया है, ऐसा वंडरफुल है, ऐसी वंडरफुल भगवान की रचना है ये। तो जब ये रचना को हम इस रूप से समझने लगते हैं, तब महसूस होता है, हाँ कहते ना ईश्वर के लिए, कहते ईश्वर तुम्हारी गत मत तू ही जान, ईश्वर की गत मत समझना मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो क्या है गत मत, भगवान कहते मैं ही आकर के मत देता हूँ कि कैसे मैं गति सदगति करता हूँ, तो भगवान आकर के मत देते, अभी वो मत दे रहे हैं। तो इसलिए ड्रामा को भी हम ऐसे एक्यूरेट समझें, नथिंग न्यू का भी पार्ट हो और सब कुछ नया, सब कुछ नया, और नया है तो और ही इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, और आगे देखिए, और आगे देखिए, और आगे देखिए, और सब कल्याणकारी है। तो साक्षी दृष्टा भी हो सकते हैं और न्यारे प्यारे भी हो सकते हैं, और ये है ड्रामा में अटल निश्चय। लेकिन ड्रामा को उल्टा नहीं लेना है। कई पूछते ना कि बाबा बताते मुरली में, कोई पूछते पहले पुरुषार्थ या पहले प्रारब्ध, पहले कर्म या पहले भाग्य, वास्तव में कर्म को पहले कहेंगे। ये भी ड्रामा के अंदर निश्चित है, पहले कर्म फिर भाग्य, ये नहीं भाग्य फिर कर्म, जो भाग्य में होगा वो होगा, ये नहीं। पहले कर्म को महत्व देना है, फिर भाग्य को महत्व देना है, क्योंकि कर्म अनुसार ही भाग्य बनता है। तो जब बुद्धि में इस प्रकार से हम ड्रामा को समझने लगते हैं तो हम बहुत शांत रह सकते हैं, इस खेल को देखते रहेंगे और उसमें फंसेंगे भी नहीं, क्योंकि फंस गए तो फिर न्यारा प्यारा बनना मुश्किल हो जाता है। तो फंसना भी नहीं है, न किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में साधन में स्थान में फंसना है, तो फंसना भी नहीं है, अटकना भी नहीं है, और फंसने के साथ साथ दूसरा क्या होता है, छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। बाबा कहते तुम सन्यासी थोड़ी हो, तुम घर बार छोड़ के थोड़ी कोई यहाँ बैठे हो, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ जो बहनें आती है वो कोई घर में नहीं जाती है। कई लोग समझते हैं, पूछते हम लोगों से आप लोग घर जाते हो, हम कहते क्यों नहीं जाते हैं, कोई रोका हुआ थोड़ी है, वो भी आते हैं हम भी जाते हैं, वो भी अलौकिक परिवार बन गया है, क्यों नहीं जाएंगे, कोई हम कोई जेल खाने में थोड़ी बैठे हैं या तो स्वतंत्र है, हाँ क्यों नहीं, मना तो है नहीं। और ही बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर वालों की सेवा सबसे पहले करो, घर वाले की सेवा होगी तो और ही सर्विस होगी, ये नहीं छोड़ के हम यहाँ आकर के कैद में बैठ गए हैं, नहीं, या तो और ही विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो जब ड्रामा में इतना हमें निश्चय हो जाता है, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, तो परिवार में निश्चय रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज है, क्योंकि परिवार में एक बात सदा हमें याद रखनी होगी कि हर एक का पार्ट अपना अपना है। बस ये अगर पक्का हो जाए ना बुद्धि में कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, तो कभी भी किसी के बारे में प्रश्न नहीं उठेंगे, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसका इसी समय ऐसा ही पार्ट है। तो जैसे ड्रामा के ज्ञान से हम साक्षी दृष्टा होकर चल सकते हैं, इसी प्रकार परिवार को देखते भी साक्षी दृष्टा होकर चल सकते हैं। चलो कोई कहे कि मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूं, इसका ऐसा व्यवहार है, मैं उसको सम्मान कैसे दूं, सम्मान तो उनको दिया जाता है जो जिसमें कुछ गुण हो, उसमें तो गुण ही नहीं है, तो चलो सम्मान मत दो, रिस्पेक्ट मत दो, लेकिन कम से कम उसको एक्सेप्ट तो करो ना, वो आपके ही परिवार का ही है, वो कोई गैर नहीं है, आपके ही परिवार का है, ये अलौकिक परिवार ही है, चाहे लौकिक परिवार भी है, उनका यही पार्ट है, रिस्पेक्ट न दो पर एक्सेप्ट तो करो, स्वीकार तो करो कि हाँ ये इसका ये पार्ट है। और बाबा भी कहते हैं कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, और राजधानी स्थापन हो रही है, ये तो हो नहीं सकता कि दो व्यक्ति एक गद्दी पर बैठे, एक ही राजा बैठेगा ना गद्दी पर, सिंहासन पर दो थोड़ी एक सिंहासन पर बैठ सकेंगे। कोई भी रेस होती है, उस रेस में जो अंत होता है ना, उसमें फोटो फिनिश होती है, फोटो फिनिश, वो लास्ट का जो दृश्य, बस कौन किसका पैर आगे आया, किसका हाथ आगे आया, वो उस पर ही निर्भर होता है, एक सेकंड का ही अंतर, वो पड़ गया तो फर्स्ट और सेकंड आ गया, थोड़ा भी 0.0001 उतना भी अंतर आ गया तो फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जबकि है ही हरे का पार्ट अपना अपना, तो संशय उठाने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा आकर के, बाबा कहते हैं मैं इस समय आकर के राजाई भी स्थापन करता हूं तो सत धर्म भी स्थापन करता हूं। जो सत धर्म जो विनाशी था, जो खत्म हो गया था, प्राय लोप हो गया था, वो मैं आकर के अभी स्थापन कर रहा हूँ। तो हम उसी देवी देवता धर्म के हैं, पर पहले ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण माना ये चार फाउंडेशन हमारे इतने मजबूत हो तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो हमको हिला सके, कोई नहीं। माया तो क्या, माया का वो रावण भी आ जाए तो भी हिला नहीं सकेगा। कौन मेरा साथी है, किसके साथ हूँ मैं, क्या मेरा ऊंचा पाठ है, कितना बड़ा परिवार है, बस ये निश्चय सदा रहे तो ये जीवन सबसे सुंदर जीवन, ब्राह्मण जीवन बाबा की का दिया हुआ ये जीवन है। और इसी निश्चय से सदा आगे बढ़ते रहना, यही हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सभी डायमंड हॉल के सेवाधारी आगे सोफे पर आकर बैठ जाएं, आगे के सोफे खाली।
ओम शांति। सभी अपने अपने सीट पर बैठिए। अभी खुदा भगवान के लिए मैं गाना गा रहा हूँ, तो आप भी सुनिए, आपने सुना हुआ होगा वो गाना।
तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा। दर्द ठिकाना, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बैठा मुसाफिर तू ठहरा किनारा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा से